आज के मुरली के पॉइंट कौन सुनाएगा? अच्छा, बाबा ने कहा बिजनेस वालों को, जो बिजनेस करते हैं। हाँ, तो बाबा ने कहा होलसेल बिजनेस करो, रिटेल में छोटा छोटा नहीं, थोड़े थोड़े नहीं, एकदम पूरा। तो कौन सा बिजनेस करेंगे बाबा से? तो मन मनाभव कैसे करेंगे? मन मनाभव का अर्थ क्या है? एक बाबा को याद करते हो मन में, तो वो बिजनेस हुआ, बिजनेस हुआ। हाँ, और रिटेल माना क्या फिर? छोटा बिजनेस माना क्या? हाँ, और बताओ, रिटेल बिजनेस क्या और होलसेल बिजनेस क्या? होलसेल में सीधा बाबा फुल है ना, सर्वशक्तिवान को डायरेक्ट इंडस्ट्री से ले आते हैं, है ना, इधर इधर से उधर से नहीं लेते हैं। तो बाबा ने कहा मन एक बाप से लगाओ, तो उससे पूरी शक्ति हो। तो क्यों वो ज्ञान लास्ट में स्लोगन में सुनाया, सर्व खजानों का, खजानों की चाबी चाहिए। तो एक परमात्म से प्यार है, संबंध है, तो पूरे खजाने मिलेगा ना। इंडस्ट्री उधर है, जैसे होलसेल वाला कहता है जहां फैक्ट्री में बनता है वहां से ले आते, दुकान से इधर उधर नहीं लेते, तो वहां फुल प्रॉफिट मिलता है। तो होलसेल कौन है? हमारा बाप है, उनके साथ बुद्धि हो। क्यों? वो सर्व खजानों की चाबी उसके पास है। तो वो सर्व खजाने अगर चाहते हो तो उनसे परमात्म प्यार चाहिए। परमात्म प्यार कब होगा? जब उससे बहुत प्राप्तियां हुई है। तो बार बार बहुत प्राप्ति करनी है, पता है ज्ञान मिला, बहुत कुछ बेनिफिट होने वाला है, प्राप्ति मिलने वाले, तो उनसे प्राप्त प्यार होता है। अगर कुछ मिलने वाला नहीं, उनसे प्यार होगा? संबंध जोड़ेंगे, कुछ मिलने वाला नहीं है, तो ये सब कुछ देगा। बाबा ने गारंटी किया 21 जन्मों के लिए। क्यों? बाकी कोई नहीं देगा, भगवान एक ही देगा। बाकी कितने धर्म गुरु है, कितने शास्त्र है, उनका भी ज्ञान सुनने से कुछ मिलेगा ना? नहीं मिलेगा। कैसे? तो वो भी कहते हैं भगवान का ही ज्ञान कहते हैं ना, तो मनुष्य का तो नहीं कहते है। क्यों? अंतर क्यों? दोनों में अंतर कुछ बताओ। ये भगवान का ज्ञान है, मनुष्य का ज्ञान, ये देवताओं का ज्ञान, ये साधु संन्यासियों का ज्ञान, कैसे कहते हो? हाँ, तो भी वो भगवान का है ना, तो वो भी कहते हैं शास्त्रों का। तो भगवान भगवत गीता का है ना, मनुष्य गीता तो नहीं कहा, तो क्या कैसे कहेंगे आप? हाँ, तो यहाँ भी भगवान मुख से सुना, ऊपर से तो नहीं सुनाता है सीधा। हाँ, तो जो गुरु है वो भी तो नॉलेज फुल है, उनके पास भी कितना ज्ञान सुना, कितना देखो रामायण महाभारत, क्या क्या शास्त्र बने। अच्छा, तो आप भी तो बैठते समय आत्म शरीर समझ के बैठते हो, भी बाबा ने आज बताया आत्मा समझ के मुझे याद करेंगे तो, है ना, तब विकल विनाश होंगे। तो सुनते समय तो शरीर में ही है, शरीर द्वारा ही सुनते हो, शरीर के भान में रहते हो, तो इसलिए दुनिया में कहते हैं सत्संग से सतगति होती है। सतगति माना क्या? शरीर काला गोरा नहीं होगा, आत्मा की जो बुरे कर्म करते थे तो वो बुरे कर्म नहीं करते, वे अच्छे कर्म का सदगति, बुरे कर्म करते हैं तो दुर्गति है, पाप और पुण्य। तो सत्संग किसको कहेंगे? कहीं भी जाओ सत्संग है ना, दुसंग तो नहीं है। रामायण सुनो, महाभारत सुनो, कबीर की सुनो, गुरुद्वारे में, तो सत्संग है ना। तो वो सुनने से आपको अच्छा परिवर्तन होगा ना कर्मों में। तो कैसे कहेंगे, किस आधार से? अगर किसी को बुखार आया कैसे कहते हो? थर्मामीटर है, कहीं से भी दूध ले लो, दूध तो सफेद होगा ना, काला लाल पीला तो नहीं होगा, कहीं से भी ले लो, लेकिन इसके पास जो दूध मिलता है वो प्योर है, इनके ये पानी डालता है, कैसे कहते हो आप? साइंस ने थर्मामीटर बनाया, हर चीज की मापदंड है, मेजरमेंट है, ऐसे नहीं किसी ने कहने से हो जाएगा, हर चीज का माप। कैसे कहा आपने ये ऐसा है, ये ऐसा है? तो सत्संग किसको कहते हैं? कहीं भी जाओ, किसी का भी ज्ञान सुन लो, कहीं भी दूध ले लो, सफेद होगा, दूसरा कलर नहीं होगा, लेकिन आपको लेते समय मेजर मापदंड है, एक थर्मामीटर था, ये प्योर दूध है, इसके अंदर पानी नहीं है, इसके अंदर पानी है, तो वो मेजरमेंट करेंगे, मापदंड देखेंगे तो पता चलेगा ना। तो यहां भी जो ज्ञान सुनते हो कहीं भी जाकर, तो ये सत्संग नहीं है, तो कैसे कहते हो, किस आधार से कहा आपने, तो उसका भी कोई मापदंड होना चाहिए ना, तो उसका भी मापदंड है। तो जहां भी जाओ, किधर भी जाके ज्ञान सुनो, चर्च में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, कहीं भी जाओ, ज्ञान तो है, कोई और को सुनाते नहीं है, ज्ञान ही कहते हैं। लेकिन वो ज्ञान तब कहेंगे, वो पतित आत्मा को पावन बनाता है, सत्संग सत गति होता है, कभी आत्मा शरीर की नहीं, आत्मा की है। अगर उस सत्संग में जाने के बाद अंदर घुसते आपको कहते हो आत्मा समझ के बैठो, आत्मा सत्य है, शरीर आज है कल नहीं है, तो सत्य की स्मृति में वहां जाके अगर आप बैठ के ज्ञान सुन उधर बैठते हो तो वो सत्संग पहला सत्य, आत्मा सत्य है ना, तो वहां कहीं भी जाओ अगर आत्मा समझ के बैठो, आत्म अभिमानी होके बैठो पहले। जैसे अभी देखो आप आते एकदम ज्ञान सुनाना शुरू नहीं किया, एकदम बाबा मुरली नहीं सुनाता, पहले गीत बजता है ना, शरीर के भान छोड़ करके अच्छे विचारों में आओ, आत्मचिंतन में, आत्म अभिमानी होके बैठो, सत्य ये, उसकी सदगति करनी है, उसके अंदर बुरे आते विचार, फिर वहां बैठकर किसका ध्यान लगाया आपने, कोई गुरु, कोई देवता, कोई मनुष्य, कोई महात्मा, किसी का लगाया, एक निराकार, सत्यम कृष्णम सुंदरम नहीं कहा, सत्यम रामम नहीं कहा, सत्यम शिवम, निराकार है ना, तो उस निराकार को उसने कहा, मैं पतित आत्मा को पावन करता हूं, शिव ने विष पिया है और किसी ने नहीं पिया है ना, ये पांच विकार मनुष्य को दुख देता है, विष है, तो ये शिव ने लिया है, तो वो कौन है, पतित आत्मा को पावन बनाता है। उस एक निराकार को अगर याद करते हो यहां बैठ करके, उसने कहा मैं पाप मिटाता हूं, पतित आत्मा को पावन करता हूं, सदगति देता हूं, तो कहीं भी जाओ अगर वहां आपको कहते निराकार को याद करो, एक निराकार सत्संग है वो, ये दो सत्य हो गया, कहीं भी मिले, किसी के पास भी दूध मिले, प्योर होना चाहिए, यही नाम है मतलब। तीसरा, तो किसकी वाणी है, किसी गुरु की, किसी साधु की, किसी महात्मा की नहीं है, ज्ञान का सागर कहा, निराकार भगवान इस तन में आकर उनके द्वारा ज्ञान सुनाता है, हो गया। अब आप पूछेंगे भाई जी बाकी धर्म गुरु है तो वो भी तो ज्ञान सुनाते हैं, भगवान ही आएगा उनके तन में, ये भी कह सकते हो आप, जो भी किसी के द्वारा ज्ञान सुनाया उनके तन में भी भगवान ही आया होगा, ऐसा कह सकते हो आप। अब देख लो सत्ती साहब बता पुटपत्र में शरीर छोड़ा, उनके कितने फॉलोअर है आज भी है, कितने धर्म गुरु आए, कितने देवता आए, क्राइस्ट आया, कितने गुरु आए, तो वो उनके फॉलोअर अभी भी है, वो शरीर छोड़ के गए है ना, गए ना, अभी तो नहीं है, लेकिन उनके जो फॉलोअर है, उनके जो बच्चे है, कोई भी है, उनको ज्ञान कौन सुनाएगा, उन्होंने अगर वो आप भगवान है तो दूसरे शरीर में आकर ज्ञान सुना, गीता सुना सकता है, एक बार सुनाई थी वही चल रही है, अगर वो भगवान निराकार है तो दूसरों के तन में आकर के आज भी सुना सकता है, श्री राम था, श्री कृष्ण था, हनुमान था, देवताएं थे, गुरु थे, कितने गुरु गए, तो किसी के तन में आके बाद में उनका तन नहीं, एक छोड़ दिया दूसरे में आ सकता है। फिर आप पूछेंगे क्या ब्रह्मा कुमारी आश्रम में शिव बाबा आता है, भगवान पढ़ाता है, तो ब्रह्मा बाबा के तन में आता था, ब्रह्मा बाबा गया, शिव बाबा गया, कैसे पढ़ाता अभी, अब इधर बताओ, इधर भी बताओ, है ना, वहां गया, हाँ ब्रह्मा बाबा जब तब था तो शिव बाबा उनके तन में आकर ज्ञान सुनाता, ब्रह्मा बाबा गया गुलजार दादी के तन में आया, 50 साल, एक दो साल नहीं, 50 सालों से गुलजार अपना तन न होते हुए भी बच्चों को पढ़ाने के लिए, माँ बाप उसको कहते हैं, भगवान तो माँ बाप कहते हैं, और किसी को नहीं, गुरु को, किसी गुरु को माँ बाप नहीं कहते, वो ज्ञान दिया चले गए, देवताओं को भी नहीं कहते, तो भगवान बच्चों को जन्म देके छोड़ता नहीं है, पालना करता है, तो दूसरों 50 साल, एक दो तीन साल नहीं, 50 सालों तक अपना तन नहीं होते हुए भी गुलजार दादी के तन में आके ज्ञान सुनाया कि नहीं सुनाया, और दूसरा सुनाया वही है ना, तो जैसे एक बार सुनाया तब कहते हैं भगवान कौन, किस आधार से आप कहेंगे, कैसे आता है वो, कैसे मनुष्य, अगर कोई देवता है, अच्छा भगवान है, गुरु कोई है, दूसरों के तन में आके सुना सकता है, अभी पुटपात्री का सत्य साहब बता शरीर छोड़ के गया, तो दूसरों के कितने चमत्कार था, कितने लोगों को क्या क्या देता था, ठीक है, उनके अभी भी फॉलोअर लाखों है, उनकी पालना कौन करेगा? तो दूसरों के तन में आकर ज्ञान सुना सकते हैं ना, पालना कर सकते हैं ना। बाबा ने 50 साल किया ना, तब कहते हैं भगवान बच्चों को जन्म देके के माँ बाप है, इसलिए सारे विश्व के अंदर भारत में ही भगवान को माँ बाप कहते हैं। सारा विश्व भगवान को गॉड फादर, बाप है, वो माँ नहीं है। किसी के द्वारा ज्ञान सुनाएगा? तो भगवान माँ के, ब्रह्मा माँ के द्वारा आकर ज्ञान सुनाता है। फिर भी बाबा ने कहा होलसेल बाप से वर्षा मिलेगा। मन मन एक बाप को याद करो, उसने कहा मैं पतित आत्मा को पावन करता हूं, उससे वर्षा मिलने वाला है। तब कहा एक बार आप क्या करो, बाप पर वारी जाओ, तो बाबा 21 गुना वारी जाता है, मतलब वर्षा देता है ना। तब बाबा ने आज कहा कि क्या करो, तो पता होना चाहिए, ऐसे नहीं, ये भगवान का ज्ञान सिद्ध करना पड़ेगा ना। कोई पूछेगा और भी बहुत तरीके हैं, ये तो एक तरीका बताया जो आज बाबा ने कहा। कैसे कहते हो आप भगवान पढ़ाता है, ये भगवान नहीं पढ़ाता है, तो ये दूध ठीक नहीं है, ये दूध ठीक है, हर चीज के मापदंड है। तो सत्संग उसको कहते हैं जहां तीन प्रकार की सत्यता अगर कहीं भी मिलती है, यूनिवर्सल है, नेचुरल है, तो कहीं भी मिलती है उसका नाम सत्संग। उससे आपकी सदगति होगी। वो कहां मिलती है देख लो आप, सब जगह थर्मामीटर तो एक ही है ना, विदेश में जाके दूध ले लो, भारत में आके ले लो, कहीं भी ले लो, वो एक ही मेजरमेंट बताएगा, मापदंड हर चीज का। तो यहां भी मापदंड है, यूनिवर्सल है। तो भगवान का ज्ञान कैसे, सदगति तब होंगी, सदगति मना पाप मिटते। कल हम बहुत गुस्सा करते थे है ना, ज्ञान समझ में आया, सिर्फ पहले भी ज्ञान था। तब कहा शास्त्रों में विश्वामित्र ने इतनी तपस्या किया तो भी क्रोध नहीं मिटा। हमको अब भी आज से 5 साल हो गया होगा, एक जैन गुरु था तो कितने साल बिहार में जंगल में रहा, और उनको 5 यूनिवर्सिटी वालों ने पीएचडी डॉक्टरेट की डिग्री दिए है, 5, एक दो नहीं, इतने किताबें लिखा। उसने अपना सारा एक प्रोग्राम बनाया बहुत बड़ा, सारे जैनियों को, बड़े बड़े हाथी थे 5, और कहा निमंत्रण दिया ब्रह्मा कुमार इसको भी 5 मिनट स्पीच करने के लिए। तो हमको बताया, हमने कहा 5 मिनट के लिए इतने दूर क्यों जाएंगे, छोड़ दो, उधर ही सेंटर के किसी बहन को जाओ बोलो। तो वो उनको पता चला, उन्होंने कहा नहीं उनको खास बुलाओ और 1 घंटा टाइम दे दो, फिर दोबारा आशा रात को आया, सवेरे कल 8 बजे पहुंचना है, 8 बजे शुरू कल, और अभी रात को शाम तक बता रहे कैसे जाएंगे। तो भी वो भाई यहां से कार से अहमदाबाद लेके गया, रातों रात प्लेन से गए और सवेरे पहुंच गए। जाते उसके पास बहुत लोग मीडिया वाले इकट्ठे हुए थे, हमको देखते उन्होंने कहा सब बाजू में जाओ, और हमारे साथ आधा घंटा अकेला बैठा। कहता मैंने दीक्षा लेने से पहले पूरा ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान सुना, मेरी इच्छा थी ये ज्ञान सुनू, मैं ये करूं, ये सुनने के बाद मुझे माँ बाप के प्रेशर था, नहीं आप जैन धर्म के ये करो, संन्यास ले लो, ब्रह्मचारी रहो, लेकिन ये करो। तो उसने कहा मेरा फुतब, मैंने खास कहा कि बोला, तब हमको हाथ पकड़ के लेके गया और अपने गद्दी पर बिठाया अपने साथ, फिर मुझे कहने लगा आप हमको साथ दे दो, हम और आप मिलके बहुत सेवा करेंगे। हमने कहा स्वामी जी क्या सेवा करेंगे आप, आपको हमारा साथ किस प्रकार चाहिए? कि सबके व्यसन मुक्त करना है। हमने कहा वो व्यसन मुक्ति का काम हमारा नहीं, वो तो गवर्नमेंट भी करता है, कोई एक साधारण व्यक्ति भी कर सकता है, एक डॉक्टर भी करेगा, वो नहीं। तो हमें वो आपको साथ देंगे, क्रोध मुक्त बनना है। नहीं वो तो संभव ही नहीं है, आप सोच लो। कहता ये तो संभव ही नहीं है, क्रोध मुक्त हो ही नहीं सकता है, क्रोध तो चाहिए। समझा भगवान कौन सा विष लेता है, किसको भगवान कहते हैं। उसके बाद देख लो, तो उसने हमने कहा क्रोध का ये व्यसन तो कोई भी, एक डॉक्टर भी कहता है दारू छोड़ो, ये करो, दवाई देगा, तो हमारा काम थोड़ी है उसके लिए, उसके लिए भगवान थोड़ी आएगा। तो हमने कहा कि नहीं, क्रोध मुक्त करना ये हमारा काम है। तो कह रहे ये तो संभव ही नहीं है। अभी देख लो दूसरा और एक मिले, तो 2 साल पहले एक कन्या लगे मुझे, सन्यासी है, बेंगलुरु से आई, तो टीचर बहन लेके आई, अचानक उस बहन को किसी ने बुलाने के लिए भेजा, बुलाया तो वो चली गई, तो वो सन्यासी अकेली रूम में। तो मैंने अच्छी तरह से पूछ सकता, लेकिन कोई दूसरे होते ना उनको प्रश्न नहीं कर सकते, इनसाइट होता है, ये कुछ पूछो। तो मैंने अच्छी तरह से पूछा, तो मैंने कहा आप कहाँ तपस्या करते थे? कहते हिमालय पर इतनी ठंडी थी, इतनी गुफाओं में बैठकर मैंने 2 साल तपस्या किया। हमने कहा क्या तपस्या किया उधर? तो कहता आंखें बंद करके ओम करती बैठती थी 2 साल, इतनी ठंडी गुफा के अंदर, कुछ भी नहीं उधर, कोई भी पूछता नहीं, 2 साल किया। तो हमने कहा खाना कब खाते थे, कौन खिलाता था, स्नान कब करते थे, ऐसे पूछता गया। तो कहते खाने के बाद पूछा मैंने, खाना कैसे खाते थे जब उधर? तो कहने लगे हमको खाने की इच्छा भी नहीं, भूख भी नहीं थी, लेकिन हम आंखें बंद करके ओम करके बैठते हैं तो इधर पाव को गर्म लगता है, तो आंखें खोलती हूं तो 2 रोटी और सब्जी पत्ते को लपेट करके रखा हुआ है, गर्म लगते आंखें खोलती हूं तो 2 रोटी और सब्जी है। एक दिन भी 2 साल में मैं भूखी नहीं रही। फिर मैंने पूछा स्नान करके कैसे करते हो, 2 साल में कहां स्नान करते हैं ठंडी में? तब तक एक कोई बीच में घुस गया तो वो बात कर रहे, वो कट हो गई, फिर भी वो चली गई, 1 मिनट के बाद वो बात रह गई। फिर मैंने पूछा क्या आपको कभी क्रोध नहीं आता है, आपके जब सोते हो बुरे स्वप्न नहीं आते हैं? अगर तपस्या किया किसके लिए किया, विश्वामित्र ने किया क्रोध मिटाने के लिए, कुछ कारण होना चाहिए ना, किसके लिए? तो उन्होंने क्या जवाब दिया, उसने जवाब दिया मेरे, तब तक मुझे पता लगे माता है, तो मेरे बेटे ने शरीर छोड़ा तो मैं कहीं थी, मुझे कार से लेके गए, उसके शव को देखते हुए मुझे आंसू नहीं आए। हमने क्या पूछा, वो तो अभी माताएं भी ज्ञान समझ में आ गया तो दुख नहीं होगा, पता है ये शरीर छोड़ के दूसरी आत्मा, आत्मा दूसरे शरीर में जाएंगे, कि जो मुझे आंसू नहीं, मैंने पूछा था क्रोध नहीं आता है क्या, बुरे स्वप्न नहीं आते, पाप मिट गए? तो दुनिया का जो तपस्या और ईश्वरीय विश्वविद्यालय में तपस्या, दोनों में अंतर। भगवान पतित को धन देने नहीं आया, बीमारी मिटानी नहीं है, बाबा ने कहा बच्चे ये सब डॉक्टर ठीक करेगा, मेरा एक ही काम है, पतित आत्मा को पावन करने आया हूं, है ना, आई एम द प्यूरिफायर कहा, आई एम द लिबरेटर, मुक्ति करता, मुक्त करता हूं पापों से, है ना, प्यूरिफाई करता हूं, किसको शरीर की बीमारी नहीं, लंगड़े को अंधे को ठीक करो वो डॉक्टर करेगा। तो भगवान कौन और देवता कौन, मनुष्य कौन, गुरु कौन, ये दोनों को अच्छी तरह से जानना चाहिए। ये बाबा ने आज का होलसेल माने डायरेक्ट है, डायरेक्ट मुझे याद करो। तो मेरे शक्ति से आप उस विधि बताया कि आत्मा के अंदर पाप है, शरीर के अंदर नहीं, आत्मा समझ के बैठो, है ना, आत्मा के वाइब्रेशन ही ऊपर जाते हैं, क्योंकि आत्मा लाइट है। शरीर समझ करके अगर आप कितना भी पूजा करो, कितना भी अच्छे बातें का विचार करो तो भारी है, शरीर का भान है, वो विचार भारी होते हैं, वो ऊपर नहीं जाते हैं। तो योग करते समय भी तब बाबा ने कहा डायरेक्ट क्यों करो, किसी के वाया नहीं, मंदिर में किसी गुरुद्वारा और किसी के द्वारा नहीं, सीधा डायरेक्ट होलसेल, जहां कंपनी है सीधा कंपनी से माल ले लो, है ना। तो इसलिए डायरेक्ट होलसेल, और ये कैसे कैसे याद करो तो वो भी विधि बताया आज, आत्मा समझ करके। फिर बाबा ने 3 बातें और बताया, तो क्या कहा, एक शांति धाम को याद करो, पहले बाप को याद करो। तो बाप को याद कैसे करेंगे, कौन है वो बाप, क्या याद करेंगे उसको, उसको भी खोलो, ऐसे बोल देते हैं बाप को याद करो, क्या बाप को याद करेंगे, घर में पिताजी पिताजी करते रहेंगे नहीं, तो पिताजी को कैसे याद करेंगे आप, कोई मिलेंगे तो बताएंगे ना हमारा पिताजी ऐसे है, हमको ये लाके देता, हम जो कहा वो करता, हमारे पिताजी मिनिस्टर है, उनके पास इतने पैसे, ऐसे बताएंगे ना, तो शिव बाबा को कैसे याद करेंगे। एक दूसरा बाबा ने कहा शांति धाम को याद, क्योंकि शांति धाम आपका घर है, घर को याद करो। तो घर में, घर के लिए क्या याद करेंगे, हमारा घर इतना बड़ा है, इतने कमरे है, ऐसे कैसे सोचेंगे। हाँ, फिर बाबा ने 3रा कहा, क्या कहा, सुख धाम को याद करो। ये 3 बात, अब ये तीनों को स्पष्ट करके कौन बताएगा, आप भी कुछ बताओ, पहले बाप को कैसे याद करेंगे, क्या याद करेंगे, करते हुए क्या करते हैं उसका, हाँ पतित पावन एक, हाँ पानी का सागर है और दूध का सागर है नहीं, हाँ और हाँ, तो अगर आप कहेंगे ना हमारे पिताजी के पास ये चीज है, तो बच्चे बाप को जानते हैं, हमारे पिताजी के पास क्या है। तो आपका अगर भगवान बाप है, आप कहते हैं मैं खुदा का बंदा हूँ, भगवान का बच्चा हूँ, तो भगवान के पास क्या है? तो क्या याद करेंगे उससे आप, वो बताओ, पूरा बताना। सुख है, शांति है, सदा सुखी रहते हो। और हाँ, और दो तीन हो गया, इतना ही। सर्वशक्तिवान कहा, कल बाबा ने कहा आपको देखते ही औरों को ऐसा फीलिंग आएंगी, क्योंकि आपकी शक्ति है ना, सहन करने की, निर्णय करने की आपकी शक्ति। तो शुभ बाबा को सर्वशक्तिवान आज भी कहा, मैं कौन? बाबा के आठ मुख्य शक्तियां है। पवित्रता का सागर, देखो मुरली में आता है, मैं शांति का सागर हूं, आनंद का सागर हूं, ज्ञान का सागर हूं, दुख हरता सुख करता हूं, सुख का सागर नहीं, और मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता हूं, और भाग्य विधाता हूं, बच्चों के भाग्य बनाने के। आज बाबा ने कहा बाप आके बच्चों को विधि बताया, कौन सी? याद करने की। युक्ति बताता है ना, कैसे कैसे याद करे, तो युक्ति बताता है। तो ऐसे बाप आकर के बच्चे तुम्हारा भाग्य कैसे बनेगा? अपना बनेगा? खेती में एक बीज बोलो तो कुछ उगेगा ना, तो क्या बोएंगे तो क्या होगा? हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस चाहिए, सदा सदा हर्षित रहना चाहिए, निरोगी काया चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, और कुछ चाहिए? ये तीन ही में, ये कैसे मिलेगा? उसकी विधि बताता है। बच्चे तन से ईश्वर के अर्थ सेवा करो, ये मन और किसी का चिंतन में नहीं लगाओ, भगवान के ज्ञान का चिंतन करो, वर्णन करो, है ना। धन आप लेके नहीं आए थे, न लेके जाएंगे, है ना, तो धन ईश्वर की सेवा में लगाओ, है ना। अभी आप बताओ, इधर एक धन ईश्वर की सेवा में लगाओ, बहन जी बैठी है। अभी ये भाई जी कहेगा, बहन जी मुरली सुनाती है कभी सेंटर में, कि बाबा कहता है बच्चे तन से सेवा करो, तो भाई हैट वाला भाई सोचता है, बाबा आज तो नौकरी में छुट्टी नहीं मिलेगी, आज तन से सेवा नहीं कर सकता हूं। मुरली सुनते सुनते मन में विचार करता है, फिर बहन जी ने कहा, बाबा कहते हैं बच्चे मन से सेवा करो, बाबा जहां तन लगेगा वहां मन भी तो उधर ही लगेगा ना, मन इधर रहेगा, मन से भी नहीं कर सकता हूं, हाँ नहीं तो उधर गलत काम होगा। फिर बहन जी ने सोचा, बच्चे धन से सेवा करो, भाई जी ने कहा, अंदर ही अंदर सोचा, हाँ बाबा आज मैं धन से सेवा कर सकता हूं, देखा अपने जेब में 100 रुपया है, तो क्या सेवा करो? देखा चारों तरफ, सेवा करना है जरूर, तो तन से नहीं हो सकता है, मन से नहीं हो सकता है, धन से कर सकता हूं, तो धन उसकी ताकत इतना ही है। देखा 100 रुपया चारों तरफ, देखता है सभी लोग सोफा पर, कुर्सी पर बैठे, सभी थोड़े लोग जमीन पर बैठे, तो 100 रुपया में क्या आ सकता है? एक चेयर आ सकती है। सीधा मार्केट में गया, एक चेयर ला के सेंटर में रख दिया, तो चलेगा ना? नहीं चलेगा। क्यों भाई? भाई जी कहता चलेगा, चलेगा कहता, बहन जी कहते नहीं चलता, एक ऐसे दो अलग अलग है। हाँ तो श्रीमत मुरली जो बहन जी का थोड़ी श्रीमत है, बहन जी सीख करती है, कहती है देख लो, मुरली तो श्रीमत सुना रहे ना, बहन जी ने अपने मत से नहीं कहा, मुरली पढ़ के बताया, मुरली में बाबा कहता है बच्चे तन से मन से सेवा करो। हाँ हाँ, तो अभी उसने देखा, देखो जमीन पर बैठे भाई जी, बुजुर्ग है, ऊपर बैठने की जगह नहीं, अभी इनके लिए कुर्सी ला के रख दो। हाँ सेवा तो करनी है, तन से नहीं हो सकती है, मन से नहीं हो सकती, धन से तो कर सकता हूँ, तो उसकी अपनी ताकत, 100 चेयर लेके आओ, नहीं एक चेयर, उसने कहा 100 रुपये में एक आए तो मैं क्या करूं? तो उसके मन में, क्योंकि बाबा कहता है मुरली में, श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करना, दूध में पानी मिक्स कर सकता है, दिखाई दे पता चलेगा, श्रीमत में मनमत कैसे मिक्स होता है वो जो बहन जी बता रही थी, है ना। तो क्या हो गया बाबा, हाँ श्रीमत तो श्रीमत ही है, ये बाहर जाके कुछ भी करो, यहां कुछ करना चाहते हो तो यहां के व्यवस्थापक है, यहां देखभाल करने वाला कोई निमित्त है। आप कहेंगे ये इधर ठीक नहीं, ये भाई कहेगा इधर ठीक नहीं, तो इसको इधर उधर करते रहो, नहीं कुछ भी करना है तो निमित्त व्यक्ति, उनको बोलो भाई जी ये ठीक नहीं, इधर उधर रख दो, तो वो कहेगा आप उधर रखे तो उसको तकलीफ होता है ना, तो इसलिए वो बताएगा क्या करना है। तो अगर आपने ज्ञान सुनने के बाद जहां उसके व्यवस्थापक माना निमित्त, आप माने सेंटर में जाते हो तो वहां टीचर है, बहन जी आज बाबा ने मुरली के बाद आप मिलो, बहन जी बाबा ने आज कहा सेवा करो, तो मैं क्या सेवा करूं? मुझे लगा मैं तन से तो नौकरी में छुट्टी नहीं मिलेगी, आज काम पर जाना है, फिर मेरे पास मन भी तो उधर लगेगा, धन से सेवा करना चाहता हूं, तो मुझे विचार है मैं एक चेयर लेके आऊं। तो बहन जी कहेंगे अरे भैया बहुत चेयर है, रखने के लिए जगह नहीं है, तो यहां जमीन पर इसलिए बिठा है तो जगह नहीं है, तो आप 100 रुपया भंडारे में डालो और कोई सेवा में काम में आएगा। तब कहा श्रीमत और मनमत, ये किसी को समझ में नहीं आता। क्या आप कहेंगे मैंने मुरली सुन के तो किया ना, तो श्रीमत के अंदर मनमत कैसे मिक्स होता है तो पूछना पड़ता है। तो अगर यहां कुछ करते हो, अगर ज्ञान सुन के ज्ञान श्रीमत है, बाहर जाके कुछ भी करो कोई नहीं ज्ञान सुनाओ, तो यहां अगर इस वातावरण में कुछ करते हो यहां, तो आपको पूछ के करना चाहिए। तब एक का पदम गुना जमा होता है, नहीं तो एक का एक गुना। जैसे देखो अब ये भाई जवाब देगा, ये दोनों भाइयों के पास 100-100 रुपया है, दोनों एक साथ एक ही बैंक में गए। इस भाई ने भी उस बैंक वालों को कहा मेरा 100 रुपया बैंक में रख दो। अब इस भाई ने भी कहा भाई जी मेरा 100 रुपया एक साल के लिए रखो। एक ही बैंक में एक ही साथ दोनों ने 100-100 रुपया दिया। एक साल के बाद दोनों गए, इसको 110 रुपया दिया और इसको 100 रुपया दिया। क्यों? आप कहेंगे हम दोनों ने पैसा दिया है एक ही बैंक में एक ही साथ, ये अंतर क्यों? हाँ अभी तक भाई बताएंगे। आप कह दोनों सेवा करते हैं, उदाहरण बताया दोनों सेवा करते एक साथ, एक तो सेवा से राजा बन गया और एक तो फकीर बन गया, क्यों? हाँ देखो उसने कुछ एफडी वैसे कुछ नहीं बोला, एक शब्द बोल दिया कि एक साथ, इतना एक शब्द में कितना अंतर आ गया। ऐसे यहां भी दुनिया में बहुत लोग सेवा करते हैं, गरीबों को खाना देते हैं, दान देते हैं, कपड़े देते हैं, क्या क्या सेवा करते हैं, है ना। सेवा करते समय ये मैंने किया मेरा फोटो होना चाहिए, है ना, मैं करता हूं मेरा फोटो, मेरा फोटो, दान करते हैं फोटो भी निकालेंगे, उनका नाम भी लगेगा उधर, इसने दिया है ना। किसको दिया आपने? शरीर को, खाया पिया खत्म, एक का एक गुना। वहां क्या किया आपने अगर सेवा करते हो, यहां भंडारे में जब पैसे डालते हो, बहन जी ने कहा इसलिए नहीं शुभ बाबा ये आपकी सेवा के लिए, भगवान को याद करके किया, भगवान ने वादा किया है मैं एक का पदम गुना दूंगा, है ना। किसी को देखकर किसी ने कहा इसलिए करते हो तो वो देगा ना, एक का एक गुना। सेवा हर एक व्यक्ति करता है, भारत के अंदर हर एक के अंदर धर्म है वो, लेकिन सेवा करते समय मैंने किया मेरा नाम होना चाहिए, मैं आया उधर फोटो निकालेंगे ये करेंगे, मैं कर रहा हूं मैंने नाम होना चाहिए। तब का गुप्त दान, इस हाथ से दिया हुआ इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, किसी को पता नहीं, भगवान की सेवा देने वाला वो निराकार है ना, किसी को पता नहीं। ऐसा हो सकता है नहीं, थोड़ा तो नाम होना चाहिए, मैंने दिया पता होना चाहिए, लिफाफे पर भी नाम लिखना चाहिए। हाँ ये चीज है सेवा, दोनों ने एक साथ बैंक में सेवा किया, सिर्फ एक शब्द, किस स्मृति से सेवा कर रहे हो। तब बाबा ने आज मुरली में कहा पद्मा पदम भाग्यशाली कौन बनता है, ये स्मृति ये नशा किसको रहेगा, हर कदम में पदम है ना, पद्मों की कमाई है, लाखों की नहीं हजारों की नहीं, पद्मों की, किसकी, जिसके अंदर ये स्मृति है। तो मन मना भाव होलसेल बिजनेस करता है वो, तो कितना प्रॉफिट मिलता है उसको होलसेल में, रिटेल में थोड़ा थोड़ा मिलता है, तो ये होलसेल कैसे, हर कदम में एक निराकार भगवान सर्वशक्तिवान के, उसके स्मृति से उसके याद में कदम उठाता है, शरीर के नहीं मन के संकल्प, हर संकल्प में हर कर्म करते समय बाबा ये करो। तब बाबा ने कहा अगर मुझे पूछ करके जो भी कर्म करते हो, अगर कुछ भी हो जाए तो उसकी जिम्मेवारी मेरी है, अगर मुझे बिना पूछे आपने क्या उसकी जिम्मेवारी, सुख हो या दुख हो आप जिम्मे, आपको अधिकार है, करो और पाओ, जो करेंगे वो पाएंगे। अगर मुझे पूछ के करते हो तो उसका सुख दुख में मेरी जिम्मेवारी कि मुझे पूछा, मेरा धर्म कर्म है, मैं उसका जो अगर कुछ गलत भी हुआ तो मैं भी उसको सुलझा दूंगा। पूछ के करते हो तब का हर संकल्प में हर कदम में हो सकता है, इसलिए कहा डायरेक्ट होलसेल। आप कहीं भी जाओ कहीं भी रहो कुछ भी काम करते समय, तो बाबा का कल एक बहन जी सुना रही थी, हम नीचे जा रहे थे गाड़ी में, देखो अनुभव किसे एक एक बच्चे बाबा से कैसे साथ होता है। तो बहन जी कह रही थी कि उसको ऊपर आने में उल्टी होती है, कहते बहन जी को कहा मैं नहीं आती हूँ, बड़ी बहन जी नहीं आओ कुछ नहीं होगा, नहीं बहन जी मैं जब भी जाती हूँ उल्टी होती है मैं नहीं जाती हूँ। तो भी बड़ी बहन जी उसको जबरदस्ती लेके आई। और गुरुवार था तो उसने कहा खाएंगे तो उल्टी हो जाएंगे, फिर हर टाइम होती उसको और सारा दिन फिर चला जाता वेस्ट। तो यहाँ किसी ने उसको भोग खिला, बहन जी बाबा का भोग है, कुछ नहीं होगा, भगवान का ऐसे कुछ नहीं खाओ, नाश्ता नहीं करो लेकिन भोग खा लो। तो थोड़ा सा खाया, जब वापस जाने लगी रस्ते पर, आधा रस्ते पर इतनी उल्टी आ गई, तुरंत गाड़ी वालों को रोका, गाड़ी रुको, फिर कहा बाबा आपको मैंने कहा था, मैं आपका खाते समय याद किया उसने, बाबा भोग खा रही हूँ आपका है, अब मुझे उल्टी नहीं होनी चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। वो ऐसे बाबा को याद करके खाया, और जब कार को रोक करके बाहर उतर रही थी तब कहा बाबा आप सुनते नहीं हो, आपको कहा था, ऐसे करके बाहर आई, उल्टी करना है। तब तक चकार के चारों तरफ बंदर घेर, बंदर ने घेर लिया, अभी रोड में इधर एकदम बंदर आ गए। वो बंदर को देख के डर गई, उल्टी कहाँ गई पता ही नहीं। माना ये देखो शरीर की नहीं, ये मानसिक है, मन की सब चीजें है। कहती इतनी उल्टी हो रही है, गाड़ी को रोक के कार से बाहर उतरी, जैसे कार रुका चारों तरफ इतने बंदर इकट्ठे हो गए, वो बंदर को देखते ही उल्टी चली गई। कहाँ गई वो? तब कहा कि देखो बाबा ने बंदर को भेजा। हाँ वो कहती है कि बाबा ने क्या किया, बंदर को भेजा, बंदर को देखते उल्टी चली गई। हमें कहाँ गई वो, बाहर आ रही थी, कहाँ चली गई? हाँ तो ये सब मन की है, मन अगर, मन के विचार है ना। तब बाबा ने कहा मन के अंदर अच्छे विचार रखो, मन मना भव का। तो वो कैसे रखेंगे? तो उसके लिए ज्ञान चाहिए। देखो ये प्रैक्टिकल कहानी नहीं, अभी कल परसों ही ऊपर आई तो अपना अनुभव बता रही थी। तो कैसे, देखो बंदर ने क्या किया, बाबा ने बंदर भेजा, अब बताओ। वो कहते बाबा ने बंदर भेजा, इतने बंदर आ गए तो वो एकदम डर गई, डर गई मन। जैसे बच्चे देख लो खेलते हैं, खेलते में पांव में खून भी आता है, तो उधर डर नहीं होती है, दर्द नहीं होता है। जब घर में आने के बाद हाँ, तो वहां क्या उसका ध्यान बंदर पर गया ना, शरीर के प्रति ध्यान चला गया है ना, ये भूल गए। तब बाबा कहते हैं योग में बैठो तो योग से बीमारी को खत्म कर सकते हो, तो नहीं तो खाली बैठते शरीर का चिंतन चलता है, ये बीमारी क्यों आई, ये ऐसा हुआ, ये और बढ़ता है। तो आप परमात्मा की याद में, भगवान की याद में रहो, उसके चिंतन से, उसको कहते हैं अपने कर्म भोग को योग से मिटाओ। कैसे योग? क्योंकि उधर ध्यान, बीमारी होती उधर ही होती है, कहीं जाती नहीं हो। उसको उल्टी थी नहीं, ऐसे नहीं, वो बाहर नहीं आया, और ज्यादा होना था, भूल गई। तो शरीर आत्मा सब करेगा ना, आत्मा के अंदर अच्छे विचार, वो डर आ गया, खत्म हो गया। कहते उल्टी अभी आई नहीं, गाड़ी में बैठे नीचे तक कुछ भी नहीं हुआ। तो बाबा ने देखो बंदर को भेजा। हाँ तो ऐसे कहते हैं शुभ विचार, अच्छे विचार चाहिए। तब बाबा ने कहा आज होलसेल बिजनेस मुझे याद करो। तो कैसे याद करेंगे? जो ज्ञान सुना, तो ज्ञान का चिंतन चाहिए, मनन चाहिए, वर्णन चाहिए, है ना। किसी को सुनाओ तो आपको लगे इनको और सुनाना चाहिए, इनको भी सुनाना चाहिए, तो खुशी मिलती है। जब गुलजार दादी कहती है खुशी बांटो, तो खुशी कहाँ मिलती है? मिलती है मार्केट में। तो मुरली के पॉइंट एक किसी को सुनाओ, आज बाबा ने ये कहा था, देखो खुश होता है, आपको भी लगता है मैंने कुछ सेवा किया। तो ज्ञान अंदर रहेगा तो दान करेंगे ना, अगर अंदर ही नहीं है। हाँ अभी कहेंगे आप याद ही नहीं रहता है, धारणा नहीं होती है, धारणा अपने आप नहीं होती है। लेकिन अभी आज मेरा बर्तन साफ ही नहीं, तो मैंने आज मैं धारणा नहीं होंगी, तो उसका कोई उपाय तो होगा ना, तो उसका उपाय बताओ। हाँ होना चाहिए, अगर बर्तन शुद्ध हो तो उसके अंदर दूध रखेंगे। अगर मेरा अभी बर्तन ठीक नहीं है आज, तो मैं इसका मतलब आज कुछ नहीं कर सकता हूँ, करने के बाद ही धारणा होंगे, ऐसे आज कुछ उपाय बताओ। कुछ उपाय है, आज मुझे ज्ञान धारण करना है, बुद्धि को आज ही करना है, संभव है? कुछ धारण बताओ, कुछ उपाय बताओ, बताओ। चश्मे वाला भाई बताता है, कुछ जल्दी बताओ नहीं तो एक गीत बजाएगा। हाँ चिंतन में करना चाहता हूँ लेकिन याद ही नहीं है, बर्तन साफ नहीं है, तो कहाँ से लेके आओ? बहन जी बताओ, रखना चाहता हूँ लेकिन बुद्धि तो खराब, स्वच्छ नहीं है ना, बुद्धि को छेद हुआ है, मैंने रखा था गिर गया, अब क्या करो? उसका कोई उपाय बताओ। उसका उपाय कहा था, हाँ देखो भाई पीछे से बताता है, एक मुरली के पॉइंट, एक ही शब्द लिख करके जेब में रखो, लिख कर रखो, रखो याद, बुद्धि में बर्तन खराब है कोई अर्जा नहीं, लिख के रखो। जैसे तीन दफा शरीर को खाना खिलाते हो, खाना खाने बैठो, बाबा की याद में क्या याद करेंगे? मुरली याद ही नहीं, जेब में है, बाबा ने आज ये कहा, पढ़ो, आत्मा को भी खिलाया शरीर को भी खिलाया। दिन में खाना आते ही याद नहीं है, कोई हर्जन जेब में है, डायरी ढूंढने की जरूरत नहीं, निकालो पढ़ो। रात को भी 3 दफा हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी कहते हैं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 3 दफा खिलाते हो। आत्मा को कमजोर आत्मा हो गया ना, हेल्दी माइंड, तो विधि हर चीज का निवारण है। ऐसे नहीं बुद्धि स्वच्छ हो तो इधर, नहीं तो नहीं कर सकते आप, तो उसका उपाय बताओ कुछ। हर चीज का सब्स्टिट्यूट निवारण है, ये नहीं तो ये करो, ऐसा करो तो ऐसा, आज क्या करो, ऐसे रोज एक एक पॉइंट रखते रहेंगे तो धीरे धीरे बुद्धि स्वच्छ होती जाएंगी, है ना। तो अगर नहीं होते तो आज नहीं कर सकता हूं तो ऐसे रहेंगे नहीं ना। हर चीज भगवान निवारण देता है, होपलेस को होपफुल करता है, हर चीज का निवारण सॉल्यूशन बताता है। यही करना चाहिए करके दबाव नहीं डालता है, निवारण देता है, ठीक है। अब बाबा को याद करो, होलसेल बिजनेस करो, हाँ इधर उधर जाना नहीं, इधर उधर जाएंगे तो रिटेल हो जाएगा,